سو آٹھویں شلوک کا انواد ہے، مجھے ایسا کوئی سادھن نہیں دکھتا جو میری اندریوں کو سکھانے والے اس شوق کو دور کر سکے، سورگ پر دیوتاؤں کے آدھیپتے کی طرح اس دھن دھانے سمپن ساری پرتھوی پر نشکنٹک راجے پراپت کر کے بھی میں اس شوق کو دور نہیں کر سکوں گا۔ تو آپ سب جانتے ہیں کیا کانٹیکسٹ چل رہا ہے، ارجن ہے یدھ نہیں کرنا چاہتے۔ پہلے ادھیائے میں ارجن بہت بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں، بھگوان کچھ نہیں بولتے پہلے ادھیائے میں، اور ارجن بڑی پانڈتیہ پورن باتیں کرتے ہیں۔ اور بھگوت گیتا کی جو بھومیکا ہے، انٹروڈکشن آپ پڑھیں گے تو اس میں پروپاد بہت کلیئرلی بتاتے ہیں کہ بھگوت گیتا کیا ہے۔ آپ لوگ بھگوت گیتا کچھ مہینوں سے شرمن کر رہے ہیں، کچھ ہفتوں سے، تو بھگوت گیتا ہے کیا؟ بھگوت گیتا ایسا گرنتھ ہے جو ہمارے لیے بھگوان نے دیا۔ جیسے آپ بہت بار سن چکے ہوں گے کہ ہم کبھی بازار سے کوئی الیکٹرانک چیز یا کوئی بھی چھوٹی سی چیز لاتے ہیں تو اس کے ساتھ بھی ایک بکلیٹ ہوتا ہے، اور اس بکلیٹ میں بتایا جاتا ہے کہ اس چیز کو آپ کیسے پریوگ کریں گے۔ ایسے ہی بھگوان نے جب یہ دیہ ہمیں دیا تو اس دیہ کا کیا سدوپیوگ کریں گے، کیسے کریں گے، اس کے لیے مینوئل دیا بھگوت گیتا۔ سو بھگوت گیتا فاؤنڈیشن سٹون ہے باقی سب گرنتھوں کا۔ آپ کتنے بھی کوئی بھی گرنتھ اٹھا لیجئے، ان سب کا فاؤنڈیشن بیسک جو ہے وہ بھگوت گیتا میں سے ہی ہے۔ سب سے ٹاپ موسٹ فلسفی ہے بھگوت گیتا۔ سو بھگوت گیتا میں کوئی بھی ایسا پرشن نہیں ہے جس کا اتر نہیں ہو۔ آپ کے جیون میں کوئی کٹھنائی ہو، کوئی پرشن ہو، اس کا اتر بھگوت گیتا میں ہے، کیونکہ بھگوان جانتے تھے کل یگ شروع ہونے والا ہے اور بھگوان نے یہ گرنتھ ہمارے لیے دیا، ارجن کو نمت بنایا، ارجن کو مادھیم بنایا کل یگ میں ہم تک اس کو پہنچانے کے لیے۔ آپ جانتے ہیں کہ کل یگ میں جب یہ گرنتھ دیا جا رہا ہے، جس کا اپدیش دیا جا رہا ہے گیتا کا، تو کہاں دیا بھگوان نے؟ یدھ میں۔ کوئی ایسے استھان پر نہیں دیا جہاں ایکانت ہو، جنگل ہو یا کچھ ہو، ایسی جگہ اپدیش ہی نہیں دیا۔ اور یہ کاریہ بھگوان ہی کر سکتے ہیں۔ آپ اور ہم ایک منشیہ، جو آج کا شلوک ہے وہ اسی پر ہی ہے کہ بھگوان کوئی سادھارن نہیں ہے، کوئی سادھارن منشیہ یدھ بھومی میں بیٹھ کر کوئی اپدیش نہ سن سکتا ہے نہ دے سکتا ہے۔ ابھی یہاں سے باہر نکلتے ہی ٹریفک جام میں بھی ہم اپنا پیشنس کھو بیٹھتے ہیں۔ سو واٹ ٹو سے آف دا وار، بیٹل فیلڈ کا کیا کہنا۔ سو بھگوان نے یہ کہاں دیا؟ جہاں ارجن بہت زیادہ انگزائٹی میں ہے، بہت زیادہ سٹریس میں تھے، اور اس سمے بھگوان بھگوت گیتا بولتے ہیں۔ یہ بھگوان نے کیوں دکھایا؟ ہر کارن ہے بھگوت گیتا بولنے کا، استھان کا، پرستھتی کا، سب کارن ہے۔ یہ ہمیں سمجھانے کے لیے ہے کہ بھگوت گیتا بھگوان نے اتنی انگزائٹی فل جگہ میں بولی جہاں اتنا سٹریس تھا، اتنی ٹینشن تھی، اور بھگوان نے بھگوت گیتا کا گیان دیا۔ اٹ مینس کہ اگر ہمارے اندر سٹریس ٹینشن ہو تو ہمیں کمفرٹ کہاں ملے گا، کہاں شانتی ملے گی؟ بھگوت گیتا میں۔ تو اسی لیے بھگوت گیتا بھگوان نے ارجن سے وہاں کہی، کروکشیتر کا یدھ ہو رہا ہے، چاروں طرف شنکھ بج رہے ہیں، کتنے لوگ مارے گئے وہاں پر؟ 64 کروڑ لوگ مارے گئے تھے۔ سو چاروں طرف سینائیں کھڑی ہیں، اور ان سب کے بیچ میں بھگوت گیتا کا گیان دیا جا رہا ہے ارجن کو، اور ارجن شتھل پڑ جاتے ہیں۔ ارجن کہتے ہیں میں یدھ نہیں کر سکتا، روتے ہیں کہ مجھے نہیں چاہیے کچھ، مجھے یہ راجیہ ہی نہیں چاہیے، خون سے سنا ہوا راجیہ چاہیے ہی نہیں، مجھے کچھ نہیں چاہیے۔ پر پھر بھگوان انہیں گیان دیتے ہیں، اور جو پچھلی بار آپ نے شلوک کیا، اس شلوک میں ارجن کیا کہتے ہیں؟ شیشستیہام شادیمام توام پرپنم، میں آپ کا شیشے بنتا ہوں، آپ مجھے سمجھائیے میں کیا کروں، آئی ایم کنفیوزڈ۔ اینڈ کرشنا نیو دس ول بی دی اسٹیٹ ود ایوری بڈی ان کل یوگ، کیونکہ گیان یہ تھریش ہولڈ آف کل یوگ کہتے ہیں، کل یوگ کے تھریش ہولڈ پہ، کل یوگ شروع ہونے والا ہے اور یہ گیان دیا جا رہا ہے، کیونکہ بھگوان جانتے تھے کل یوگ کے اندر ہم سب کے پاس اپنا اپنا کروکشیتر ہوگا۔ وی آل ہیو اے کروکشیتر آف آر اون، ہر کسی کے پاس ایک کروکشیتر ہے اپنا، ہر کوئی ٹینشن میں ہے، ہر کوئی انگزائٹی میں ہے، کوئی بھی ایسا ویکتی نہیں ہے جسے انگزائٹی نہیں ہے، جسے ٹینشن نہیں ہے، سب کے پاس اپنا کروکشیتر ہے۔ تو اس کروکشیتر میں سے باہر کیسے آئیں گے؟ جو لوگ بھگوان کے شیشستیہام شادیمام توام پرپنم کریں گے، جو بھگوان کو کہیں گے میں آپ کا شیشیہ بنتا ہوں، مجھے گیان دیجیے، آئی ایم سبمسو۔ شیشیہ بننے کا ارتھ کیا ہے؟ شیشیہ بننے کا ارتھ ہے میں آپ کو شرناگتی دیتا ہوں۔ شیشیہ مینس شرناگتی، شیشیہ مینس ششٹاچار۔ بنا شیشیہ بنے ہم भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते। इसीलिए अर्जुन ने कहा शिष्यस्तयाम शादिमाम त्वाम प्रपन्नम, मैं आपका शिष्य बनना स्वीकार करता हूँ, मुझे कृपा करके ज्ञान दीजिए। सो भगवान भी तब तक हमें ज्ञान नहीं देते जब तक हम कृपा मांगते नहीं। सबका एक कॉमन एक क्वेश्चन रहता है कि हमें कृपा, जब भगवान की कृपा होगी तब हम आएंगे, तब हम भगवान के बारे में सुनेंगे, तब हम भगवान के बारे में पढ़ेंगे, जब हम पे भगवान कृपा करेंगे। आप पर तो कृपा है, ये बेसलेस क्वेश्चन है। बिकॉज भगवान क्या कहते हैं, जब तुम क्या कहा अर्जुन ने, आप मुझ पर कृपा कीजिए, मुझे इस दुविधा से बाहर निकालिए कि मैं क्या करूं क्या नहीं करूं। क्योंकि पहला अध्याय पूरा यही है कि युद्ध शुरू होने वाला है, युद्ध का निरीक्षण हो रहा है, युद्ध स्थल का सैन्य निरीक्षण चल रहा है और चारों तरफ शंख बज रहे हैं और चारों तरफ युद्ध की तैयारी है। और इमेजिन उस युद्ध की तैयारी में भगवान भगवद गीता बोल रहे हैं और अर्जुन अपना सब संतुलन खो बैठता है, पर वो भगवद गीता के ज्ञान से अपने संतुलन को रीगेन करता है, उस एंग्जाइटी से बाहर निकलता है। सो यही भगवान सिखाते हैं हमें कि भगवद गीता ऐसा ग्रंथ है जिसको शरणागति देने से, जिसके हम सरेंडर करने से हम वही शांति पा सकते जो अर्जुन ने पाई। सो आज तभी भगवान को कलयुग में ये ग्रंथ, कलयुग के थ्रेशहोल्ड पे, कलयुग शुरू होने वाला है और भगवान ये ज्ञान दे रहे हैं, तो ये ज्ञान हमारे लिए। कई लोग सोचते हैं सिर्फ अर्जुन के लिए था, नहीं, ये ज्ञान अर्जुन को कोई आवश्यकता नहीं थी इसकी, वो तो एक लीला कर रहे हैं भगवान के साथ। ये आवश्यकता हमें है क्योंकि हम सबके पास अपना कुरुक्षेत्र है और उस युद्ध स्थल में वो एंग्जाइटी टेंशन हम सबके पास है, वो कॉम्प्लेक्स लाइफ हमारी है, उसको सिंपल बनाने के लिए भगवद गीता है। सो दोज हु फॉलो भगवद गीता, जो भगवद गीता के ज्ञान के ऊपर अपने जीवन को चलाते हैं, उनकी लाइफ सिंपल हो जाती है और जो विचार हैं ऊंचे हो जाते हैं। हाई थिंकिंग, सिंपल लाइफ, सिंपल लिविंग। जो लोग सिंपल जीना चाहते हैं उन्हें भगवद गीता के आधार पर जीवन को जीना चाहिए। सो भगवद गीता एक मैनुअल है, जैसे हम बाजार से कोई भी गैजेट लाते हैं, मैंने कहा एक छोटा सा माइक्रोवेव भी लाते हैं तो उसके बारे में भी एक किताब होती है कि इसको कैसे उपयोग में लाना है, और अगर हम उस किताब के अनुसार उसका उपयोग नहीं करेंगे तो हम उसका पूरा फायदा नहीं उठा सकते। अगर उसके हर फीचर का पूरा फायदा उठाना है, सो वी गो थ्रू द मैनुअल थॉरली, उसको हम अच्छे से पढ़ते हैं। तो ऐसे ही अपने इस मशीन का, क्योंकि इस समय बोल रही है वो क्या है, वो आत्मा है। तो ये देह क्यों मिला है कि इस आत्मा को इसके गंतव्य तक पहुंचाना है, इसकी डेस्टिनेशन तक जाना है इसको लेकर। सो ये भगवान दूसरे अध्याय में अर्जुन से अब क्या उपदेश दे रहे हैं, जो हम पिछले हफ्तों से पढ़ते आ रहे हैं, क्या उपदेश दे रहे हैं। सबसे पहला उपदेश भगवान ने क्या देना शुरू किया, आत्मा और शरीर का। क्योंकि हम किस लेवल पे जीते हैं, हम सिर्फ शरीर के लेवल पे जीते हैं, तभी भगवान ने समझाया कि आत्मा के स्तर पर जियो, आत्मा क्या है, आत्मा का ज्ञान दिया। बिकॉज हम आत्मा को उसका भोजन देना भूल जाते हैं, शरीर को तो हम खूब तैयार करते हैं, अच्छे वस्त्र पहनाते हैं, उसको खूब सजाते हैं, उसको खूब तैयार, उसको पूरा हम बिल्कुल फिट रखते हैं, पर हम आत्मा को उसका भोजन देना भूल जाते हैं। द सोल ऑल्सो नीड्स फूड। एक तोते का पिंजरा आप रख लीजिए, तोते को पिंजरे में रखिए, सोने के पिंजरे में रखिए, और उस तोते को खाना नहीं दीजिए, और रोज सुबह आके उस पिंजरे को तो खूब चमका दीजिए, कुछ दिन बाद तोता मर जाएगा। तो ऐसे ही ये जो आत्मा है ये इस शरीर में है, पर शरीर को चमकाते रहे और आत्मा को भूल गए। दो आत्मा कभी मरती नहीं है, भगवान पूरा ज्ञान देते हैं कि आत्मा का अंत नहीं होता है, पर फिर आत्मिक मौत हो जाती है। आध्यात्मिक मौत इज आत्मिक मौत, स्पिरिचुअल डेथ। वी डोंट वॉन्ट टू डाई अ स्पिरिचुअल डेथ। सो आध्यात्मिक मौत किसी को नहीं चाहिए। और आध्यात्मिक मौत कब होती है, जब हम भूल जाते हैं कि हमें कुछ जिज्ञासा रखनी है। एक अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, सबसे पहला वेदांत सूत्र की सबसे पहली लाइन है अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, मैं कौन हूं, मैं कहां से आया हूं, मुझे कहां जाना है, हु एम आई, दैट इज द प्राइम मोस्ट क्वेश्चन इन आवर लाइफ वी शुड आस्क। मैं कौन हूं, मैं कहां से आया हूं, मुझे कहां जाना है, ये सारे प्रश्नों का उत्तर भगवद गीता देती है। जैसे मैंने पहले भी कहा, भगवद गीता हर प्रश्न का उत्तर देती है। कोई ऐसा प्रश्न नहीं है जिसका उत्तर भगवान ने भगवद गीता में नहीं दिया। इवन इतने बड़े बड़े फिलोसफर्स भी, जो बड़े कॉलेजेस हैं साइकोलॉजी के, वो भी भगवद गीता में से ही फिलोसफी पढ़ाते हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, क्योंकि भगवद गीता जैसी फिलोसफी कहीं नहीं है। और भगवान का, क्योंकि ये थियस्टिक साइंस है, एक ही ग्रंथ है जो भगवान ने खुद गाया है, 700 श्लोकों की भगवद गीता ये भगवान ने स्वयं गाई है। तो इसलिए हम सबको ये प्रश्न पूछना चाहिए अपने आप से, हु एम आई, मैं कौन हूं। जब तक हम ये नहीं पूछते, हम उसको, आत्मा को उसका भोजन ही नहीं दे सकते, क्योंकि हम जानते ही नहीं आत्मा क्या है। सो भगवान ने दूसरे अध्याय में आत्मा का ज्ञान दिया। आत्मा का ज्ञान ही परमात्मा का ज्ञान है, यही हमें परमात्मा तक लेकर जाएगा। सो जो आत्मा के बारे में नहीं जानते, वो आत्मा को उसका भोजन नहीं देते। और आत्मा को क्या अच्छा लगता है? आत्मा को भगवान के बारे में सुनना, भगवान का ज्ञान, यही आत्मा को सबसे अच्छा लगता है। सो जो हम अभी करेंगे, आठवें का जो अनुवाद है वो मैं पढ़ूंगी और धीरे धीरे हम आगे चलेंगे। तो यहां पर अर्जुन कह रहे हैं, मुझे ऐसा कोई साधन नहीं दिखता जो मेरी इंद्रियों को सुखाने वाले इस शोक को दूर कर सके। स्वर्ग पर देवताओं के आधिपत्य की तरह इस धन धान्य संपन्न सारी पृथ्वी पर निष्कंटक राज्य प्राप्त करके भी मैं इस शोक को दूर नहीं कर सकूंगा। तो यहां पर अर्जुन भगवान से फिर से थोड़ा सा तर्क कर रहे हैं कि मेरी इंद्रियों को सुखाने वाले इस शोक को दूर कर सके। कुछ भी ऐसा नहीं दिख रहा इस युद्ध में कि जो मेरी इंद्रियों को सुख देगा, जो मेरी इंद्रियों को सुख देगा या इस शोक से मुझे बाहर निकालेगा कि मैं अपने पिता माँ को मार दूं, अपने गुरु को मार दूं और अपने सब भाइयों को मार दूं। तो यहां पर अर्जुन बड़े सदाचार और धर्म के नियमों का बहुत उल्लेख कर रहे हैं। उससे आगे संजय कहते हैं, संजय उवाचा, संजय ने कहा, इस प्रकार कहने के बाद शत्रुओं का दमन करने वाला अर्जुन कृष्ण से बोला, हे गोविंद, मैं युद्ध नहीं करूंगा, और चुप हो गया। सो अर्जुन जो है बहुत शोकग्रस्त है, बहुत ही ज्यादा टेंशन और एंग्जाइटी, एंड ही इज वेरी डिस्ट्रेस, बहुत ज्यादा डिस्ट्रेस है। वो कहते हैं कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, और इतने में ही चुप हो जाते हैं। और फिर संजय धृतराष्ट्र से बता रहे हैं, हे भरतवंशी, धृतराष्ट्र को संबोधित करते हुए कहते हैं, उस समय दोनों सेनाओं के मध्य शोक मगन अर्जुन से कृष्ण ने मानो हंसते हुए ये शब्द कहे। अब भगवान उपदेश देने लगे हैं और कृष्ण हंसते हुए, भगवान तो सरल और बिल्कुल ही स्माइलिंग ऑलवेज, भगवान को कोई टेंशन नहीं होती है, हो ही नहीं सकती, और वो आनंद के स्रोत रहे, सारा आनंद भगवान से आ रहा है, ऑल द ब्लिस इज फ्रॉम हिम, सब हैप्पीनेस भगवान से आ रही है। इसी अध्याय में आगे भगवान कहेंगे कि जिनकी बुद्धि मुझसे नहीं जुड़ी है, नास्तिर बुद्धि युक्त से ना चा युक्त से भावना ना चा भवत शांतिरा शांत से कुता सुखम। भगवान कहते हैं जिनकी बुद्धि मुझसे नहीं जुड़ी है उन्हें कभी भी शांत से कुता सुखम ना शांति मिलेगी, और शांति के बिना सुख भी नहीं मिल सकता। तो भगवान कहते हैं जिनकी बुद्धि मुझसे जुड़ गई है केवल वो ही शांति और सुख के हकदार है। तो यहां पर भी यही बात भगवान अब हंसते हुए शुरू कर रहे हैं अपना प्रवचन। भगवान इज वेरी काम, अर्जुन शोक में है, टेंशन में है, शोक है उनको, डिप्रेशन में है, और यही स्थिति कलयुग में हर व्यक्ति की है। हर व्यक्ति इस समय हाई ब्लड प्रेशर का मरीज है, ब्लड प्रेशर सबको है यहां, बिकॉज देयर इज लॉट ऑफ टेंशन। इतना छोटी सी बातों में, कलयुग की ये निशानी है कि छोटी छोटी बातों में झगड़ा हो जाएगा। श्रीमद् भागवतम क्लियरली उल्लेख करती है कि कलयुग के अंदर बहुत आसानी से झगड़ा करना, लोग झगड़ालू होंगे, लेजी, आलसी होंगे, उनकी मेमोरी बहुत कम होगी, आयु बहुत कम होगी, कॉन्सेंट्रेशन पावर बहुत कम होगी। ये सब कलयुग की निशानियां हैं और ये हम सब देख सकते हैं। जरा सा कहा गया है भागवतम में, किसी से झगड़ा करना, उसमें दो बूंद पानी छिड़क दीजिए और अभी झगड़ा हो जाएगा, इट्स सो ईजी। और रोड रेज तो हम रोज देखते हैं कि गोलियां चल जाती हैं गाड़ी ओवरटेक होने पर या कार की पार्किंग नहीं मिलने पर। सो दिस इज अभी तो कलयुग की शुरुआत है, हार्डली 5500 इयर्स हैव गॉन अवे, 5,500 साल निकले हैं और अभी घोर कलयुग आगे आएगा। सो कलयुग की बताया गया ड्यूरेशन इज 4,32,000 साल और इसमें से 5,000 साल निकल गए हैं, तो अभी 4,27,000 साल बाकी है कलयुग के। अभी ये स्थिति है तो आगे आगे बिगड़ती जाएगी. इट्स रिटन इन भागवतम, और जो भी भागवतम में लिखा गया वो अब तक सत्य हो रहा है, आगे भी सत्य होगा. तो यहां पर अब भगवान कहते हैं, अब पहला ये श्लोक आ रहा है ग्यारहवां, दूसरे का ग्यारहवां श्लोक आ रहा है श्री भगवान उवाच. तो भगवान अब कह रहे हैं, श्री भगवान ने कहा, तुम पांडित्यपूर्ण वचन कहते हुए उनके लिए शोक कर रहे हो जो शोक करने के योग्य नहीं है. जो विद्वान होते हैं वे ना तो जीवित के लिए ना ही मृत के लिए शोक करते हैं. तो भगवान अर्जुन से कहते हैं, तुम तो बड़ी पांडित्यपूर्ण, बहुत बड़ी बड़ी पंडितों जैसी बातें कर रहे हो कि तुम्हें ये राज्य नहीं चाहिए, ऐसा नहीं चाहिए, वैसा नहीं चाहिए. पर जो बहुत बड़े पंडित होते हैं, बहुत ज्ञानी होते हैं, वो तो किसी न जीवित न मृत के लिए शोक करते हैं. तुम ये सब तो दिखाई नहीं रहे, ये लक्षण तो तुम में नजर नहीं आ रहे. तुम जो पंडित हैं वो ना जीवित के लिए शोक करते हैं ना वो अपने मृत के लिए करते हैं. उनके हृदय में तो सब एक समान है, चाहे वो मृत हो चाहे जीवित हो. तो आगे का जो श्लोक है आज हम वो लेंगे, जो बारहवां श्लोक है, दूसरे अध्याय का बारहवां श्लोक, उसको हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे. न तु एवम अहम जातु नासम न त्वम नैमे जनदीपा न चैव न भविष्यामे सर्वे वयम अतः परम. अनुवाद तात्पर्य श्री प्रभुपाद द्वारा श्री प्रभुपाद की जाए. अब मेरे साथ अनुवाद सुनिए. ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैं ना रहा हूं या तुम ना रहे हो अथवा ये समस्त राजा ना रहे हो, और ना ऐसा है कि भविष्य में हम लोग नहीं रहेंगे. तात्पर्य सुनिए. वेदों में, कोट उपनिषद में तथा श्वेताश्वर उपनिषद में भी कहा गया है कि जो श्री भगवान असंख्य जीवों के कर्म तथा कर्म फल के अनुसार उनकी अपनी अपनी परिस्थितियों के पालक हैं, वही भगवान अंश रूप में हर जीव के हृदय में वास कर रहे हैं. सो भगवान सब जीवों के हृदय में वास कर रहे हैं. पंद्रहवें अध्याय में भगवान कहेंगे, सर्वस्य चाम हृदि संविष्ट मता स्मृति ज्ञानम अपौनम च वदेत सर्वे राहम वेदो वेदांकृत वेदविद एव चाहम. भगवान कहते हैं, सर्वस्य चाम हृदि संविष्ट, मैं सबके हृदय में वास करता हूं परमात्मा के रूप में, और जैसी जिसकी इच्छा होती है उसको वैसे ही चलाता हूं, जैसी हमारी इच्छा होती है. हम कहते हैं कि भगवान कृपा करेंगे, भगवान कृपा करेंगे जब हमारी इच्छा होगी कि वो हम कृपा लें. कृपा करके अपने सेलफोन्स को जरा वाइब्रेटर मोड पे कर दीजिए. तो यहां पर बता रहे हैं कि श्री भगवान असंख्य जीवों के कर्म और कर्म फल के अनुसार उनकी अपनी अपनी परिस्थितियों में पालक हैं, उनकी अपनी अपनी परिस्थितियों में पालक हैं. भगवान किसी पे कुछ इम्पोज नहीं करते. भगवान अर्जुन से भी युद्ध के लिए कह रहे हैं, भगवान सब कुछ अर्जुन को ये नहीं कहेंगे कि अपना गांडीव उठाओ और मेरा ऑर्डर है कि तुम्हें युद्ध करना है. भगवान अर्जुन को पूरा उल्लेख देंगे कि ये करने से ये फल प्राप्त होगा, ऐसा करने से ये फल होगा, और फिर बाद में कहेंगे यथा इच्छी तथा करो, जैसी इच्छा हो वैसा करो. माइन्यूट इंडिपेंडेंस. भगवान ने हम सबको इंडिपेंडेंस दी है. भगवान किसी को भी फोर्सफुली नहीं चाहते कि वो उनके आगे घुटने टेके. भगवान चाहते हैं वो प्रेम से घुटने टेके. भगवान कहते हैं, ददामि बुद्धि युगतम ये न माम उपयंती ते तेषां तथा युक्ता नाम भजंतम प्रीति पूर्वकम ददामि बुद्धि युगतम ये न माम उपनेति ते. भगवान कहते हैं, जो भी मेरी निरंतर भक्ति करते हैं, जो हमेशा मुझे याद रखते हैं, जो हमेशा मुझे प्रेम से याद करते हैं, भजंतम प्रीति पूर्वकम. कोई भगवान कहते हैं तेषां तथा युक्ता नाम भजंतम प्रीति पूर्वकम. सिर्फ रिचुअल नहीं करते, सिर्फ ऐसे मुझे नहीं याद करते कि सिर्फ दो मिनट अगरबत्ती जलाई या मेरे आगे माथा टेका और चलो हो गया, दस मिनट सुबह उठे, दस मिनट रात को शाम को किया, इट्स ओवर. भजंतम प्रीति पूर्वकम, जो मुझे प्रेम से भजता है. प्रेम कैसे आता है? अपनी फैमिली मेंबर्स के लिए तो हमारे अंदर बहुत प्रेम है. हमें किसी को भी अपने बच्चों के लिए खाना बनाना है तो सारा दिन टेंशन है कि याद है कि अभी उसको ब्रेकफास्ट देना, अभी डिनर देना, अभी लंच देना है. पर वो ही प्रेम भगवान के लिए बहुत कठिनाई से आता है. भगवान के प्रति हम ड्यूटी करते हैं और अपनी फैमिली के प्रति हम प्रेम रखते हैं. दोनों में अंतर है. ड्यूटी इज एन ऑब्लिगेशन. ड्यूटी और प्रेम दोनों में बहुत अंतर है. सो हमें उल्टा करना है, सिर्फ रिवर्स करना है. हम वही हैं, परिवार वही है, भगवान भी वही है, सिर्फ हमारी जो ड्यूटी है वो हो जाती है फैमिली की तरफ, और जो प्रेम है वो हो जाता है भगवान की तरफ। सो दिस इज ददामी। भगवान कहते हैं जब तुम ऐसा करते हो तो मैं क्या करता हूं, ददामी बुद्धि योगमतम, तब मैं बुद्धि देता हूं मुझ तक आने की, भगवान तक जाने की बुद्धि भगवान से आती है। भगवान कह रहे हैं सर्वस्य चामिदि संविष्टो, मैं सबके हृदय में हूं परमात्मा के रूप में, मैं सब जानता हूं, पर जैसी जिसकी परिस्थिति है, जैसा जो कर्म है उसके अनुसार, जैसी उसकी इच्छा है उसे वैसे चला देता हूं। शक्ति भी मुझसे ही आ रही है, सब कुछ मुझसे आ रहा है, पर उसका उपयोग कैसे हो रहा है, हमारी इच्छा के अनुसार। हम ऊपर से लोगों को तो वी कैन ब्लफ, लोगों को हम ढोंग कर सकते हैं, पाखंड कर सकते हैं, पर भगवान को कोई ब्लफ नहीं कर सकता। भगवान को, भगवान सबसे, हम चालाक हैं तो भगवान सबसे चालाक है, हम धनी हैं तो भगवान सबसे धनवान है, हम चोर हैं तो भगवान सबसे बड़े चोर है। तो इसलिए भगवान इज कंप्लीट इन हिमसेल्फ, भगवान सब कुछ है। तो भगवान कहते हैं मैं तुम्हारी इच्छा से तुम्हें चलाता हूं, जैसे तुम हो तुम्हें वैसे ही चला देता हूं। तो इसलिए तुम्हारा मन है मुझ तक आने का, तुम प्रेम दिखा रहे हो मुझे, तब मैं तुम्हें बुद्धि देता हूं तुम मुझ तक कैसे आओगे। फिर भगवान अपने पास बुलाते हैं, अपनी तरफ हमारा रुख कर लेते हैं, तो हम साधना भक्ति की ओर चल पड़ते हैं। तो इसलिए यहां पर भगवान कह रहे हैं कि मैं हर परिस्थिति में तुम्हारा पालक हूं, पर तुम्हारी इच्छा के अनुसार तुम्हें चलाता हूं। केवल साधु पुरुष जो एक ही ईश्वर को भीतर बाहर देख सकते हैं, पूर्ण एवं शाश्वत शांति प्राप्त कर पाते हैं। सो पूर्ण शांति, शाश्वत शांति किसे मिलती है, कौन है साधु, जो साधना करता है। साधु का अर्थ नहीं है जिसने गए हुए कपड़े पहन लिए हैं या गले में माला पहन ली, तिलक लगा लिया, वही साधु है। साधु हर वो व्यक्ति है जो साधना कर रहा है, जो भगवान का नाम का जप कर रहा है, हर व्यक्ति साधु है जो नाम जप कर रहा है, जो भगवान के लिए, जिसके अंदर प्रेम है, जिसके अंदर अट्रैक्शन है भगवान के लिए, आकर्षित है भगवान की तरफ, वो साधना करने को तैयार है। तो साधना है प्रैक्टिकल। भगवद गीता का ज्ञान विज्ञान है, कोरा ज्ञान नहीं है, ये सिर्फ विज्ञान कहा गया है, थियोस्टिक साइंस। भगवान कहते हैं ये विज्ञान है। विज्ञान का अर्थ क्या है, जो प्रैक्टिकल किया जाता है। ज्ञान होता है कोरा ज्ञान, थ्योरी, साइंस होती है प्रैक्टिकल। सो दिस इज थियोस्टिक साइंस। स्कूल में हम पढ़ते हैं साइंस में प्रैक्टिकल होता है, थ्योरी क्लास में पढ़ी उसके बाद लैब में प्रैक्टिकल करते हैं। सो साइंस मींस जो थ्योरी पढ़ी थी उसको अप्लाई करते हैं, जो थ्योरी पढ़कर आए उसे अप्लाई किया, तो दैट इज साइंस, दैट इज प्रैक्टिकल। तो विज्ञान है भगवद गीता। जब तक भगवद गीता को लाइफ में प्रैक्टिकली अप्लाई नहीं करते तब तक ये इसका कोई फायदा नहीं है, कोई इसका फल नहीं प्राप्त होगा। हमें प्रयास करना है कि इसको अपने जीवन में उतारना है। जब तक इसको जीवन में नहीं उतारते हैं तब तक हम भगवान के प्रेम से वंचित रहेंगे, भगवान का प्रेम नहीं मिलेगा। भगवान के प्रति प्रेम हमारे अंदर जागेगा ही नहीं जब तक हम इसे अपने जीवन में नहीं उतारेंगे। सो इसे जीवन में अप्लाई करना ही पड़ेगा। इसका एक भी श्लोक, एक भी पंक्ति जीवन में उतार लेंगे तो हम भगवान का प्रेम प्राप्त कर सकते हैं। हमारा अल्टीमेट गोल ही क्या है कि भगवान का प्रेम मिले, कृष्ण प्रेम की प्राप्ति हो। क्योंकि भगवान कहते हैं कि जो मुझ तक आना आता है, जो मुझ तक आएगा उसे फिर वापस लौट कर नहीं आना पड़ेगा। अगर हम पूर्ण तरह से सोल्यूशन चाहते हैं अपनी इस टेंशन एंजाइटी का, तो वो इसी भौतिक जगत में है, भगवान के जगत में ऐसा कुछ नहीं है। तो भगवान कहते हैं 15वें अध्याय में भगवान अपने ही धाम का वर्णन करते हैं कि जब तुम्हें यहां पर इतना कुछ टेंशन और ये सब इंद्रियों से सताए जा रहे हो, तो जब तुम मेरे धाम लौट आओगे तो वहां तुम्हें इस सबसे मुक्त हो जाओगे। तो इसलिए भगवान कहते हैं कि मेरा धाम में ये सब नहीं है। तो मेरे धाम तक कौन आएगा, जो साधना करेगा, जो साधु है। तो यहां पर इसी साधु पुरुष की बात हो रही है जो ईश्वर को भीतर बाहर देख सकते हैं, पूर्ण एवं शाश्वत शांति प्राप्त करते हैं। जो वैदिक ज्ञान अर्जुन को प्रदान किया गया वही विश्व के उन समस्त पुरुषों को प्रदान किया जाता है जो विद्वान होने का दावा तो करते हैं किंतु जिनकी ज्ञान राशि न्यून है। भगवान ये स्पष्ट कहते हैं कि वह स्वयं अर्जुन तथा युद्ध भूमि में एकत्र सारे राजा शाश्वत प्राणी हैं और इन जीवों को बद्ध तथा मुक्त अवस्थाओं में भगवान ही एकमात्र उनके पालक हैं। तो ये युद्ध स्थल की बात हो रही है कि वहां जितने भी हैं वो सब भगवान उनके पालक हैं। भगवान कहते हैं भगवद गीता में, अहम सर्वस्य प्रभो मता सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम बुद्ध भवा समानविता। मैं ही सब कुछ हूं, सब कुछ आध्यात्मिक जगत भौतिक जगत दोनों मुझसे आ रहे हैं। भगवान कहते हैं कि स्पिरिचुअल और मटेरियल वर्ल्ड ये दोनों ही मुझसे हैं। सब देवी देवता भी भगवान से ही उत्पन्न है, सब भगवान की शक्ति है। सब भगवान कहते हैं तुम सब जीव, और वहां पर उपस्थित प्रभुपाद इसमें बता रहे हैं कि वहां उपस्थित इतने राजा थे, जितने भी वहां पर उपस्थित और योद्धा थे वो सब भगवान से ही आ रहे हैं, सबके पालक भगवान है। तो आगे बताते हैं कि ऐसा नहीं है कि ये भूतकाल में प्राणी के रूप में अलग अलग उपस्थित नहीं थे, और ऐसा भी नहीं ये शाश्वत पुरुष बने नहीं रहेंगे। ये अर्जुन को क्यों बता रहे हैं भगवान, अर्जुन को आत्मा का ज्ञान दे रहे हैं कि ये सब पहले भी थे और अब भी हैं और रहेंगे, क्योंकि ये सब आत्मा है। इन सब का विनाश, शरीर का विनाश होगा पर आत्मा का विनाश नहीं होता। अगले श्लोक में हम जाएंगे तो भगवान कहते हैं कि ये क्या होगा, ये देह तो बदलती रहती है, जो आत्मा है। इसके बाद हम ये वाला श्लोक लेंगे तो देहन अस्मिन यथा देहे कुमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्त धीरे न स्तर न मोहति। कहते हैं जिस प्रकार शरीरधारी आत्मा शरीर में बाल्यावस्था से तरुणावस्था फिर वृद्धावस्था में निरंतर अग्रसर होती रहती है, उसी प्रकार मृत्यु होने पर आत्मा दूसरे शरीर में चला जाता है। धीर व्यक्ति ऐसे परिवर्तन से मोह प्राप्त नहीं होता है। तो यहां पर कह रहे हैं कि जो शरीरधारी आत्मा, इस आत्मा ने क्या धारण किया है, शरीर को धारण किया हुआ है। सो ये आत्मा जो है पहले एक बच्चे के रूप में जन्म लेता है, ये शरीर उसमें आत्मा होती है। तो बच्चा पहले हम देहन अस्मिन यथा देह एक बच्चे के रूप में आते हैं, फिर कुमारम टीनेज एज आती है, फिर यौवनम यूथ आ जाता है, फिर उसके बाद क्या होता है, फिर जरा बुढ़ापा आता है, और उसके बाद मृत्यु, मृत्यु के बाद ये आत्मा दूसरा शरीर धारण करती है। और जो धीर व्यक्ति है, जो व्यक्ति जो इंटेलिजेंट है, जो जिसके अंदर धीरज है, जो व्यक्ति कहा गया है कि जो सही में पंडित है, जो महात्मा है, वो इससे मोहित नहीं होता, विचलित नहीं होता। सो ये सारा ज्ञान भगवान अर्जुन को दे रहे हैं, शरीर और आत्मा का विश्लेषण। ही इज टेलिंग अबाउट व्हाट इज द सोल एंड व्हाट इज द बॉडी। एक छोटा सा एग्जाम्पल है, जैसे ये हाथ है, ये हाथ इस शरीर का अंग है, इस हाथ का क्या कार्य है, इस हाथ का कार्य है इस शरीर की सेवा करना। अगर ये हाथ इस शरीर से अलग हो जाए तो कोई हम में से कोई भी इस हाथ को देखना नहीं चाहता, फिर सब इसको कहेंगे ढक दो, दे डोंट वांट टू सी इट, और वेस्ट है फिर। तो इस शरीर का काम है, इस हाथ का काम है इस शरीर की सेवा करना, इसका पार्ट एंड पार्सल है। तो ऐसे ही जो हमारी आत्मा है वो किसका पार्ट एंड पार्सल है। भगवान गीता में कहते हैं माम एवं च जीवलोक जीव भूत सनातना, ये आत्मा मेरा अंश है, और आत्मा भगवान का अंश है। तो अंश का क्या कार्य है, जिसका वो अंश है उसकी सेवा करना। तो हमारा असली गोल क्या है, भगवान की सेवा करना। तो हमें भगवान की सेवा किस लिए करनी है, क्योंकि हम अपने कंप्लीट अपने वापस अपने धाम जा सकें। तो हम मंदिर में हम क्यों आते हैं, मंदिर में हम क्यों ये सब सुनते हैं, जिससे हमारे अंदर प्रेम जागे भगवान के लिए। प्रभुपाद कहते हैं दीज टेम्पल्स आर स्पिरिचुअल हॉस्पिटल्स। जैसे शरीर बीमार होता है तो हमें हॉस्पिटल जाना पड़ता है, हम वहां जाके इलाज कराते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं इलाज कराते हैं, ऐसे ही ये स्पिरिचुअल हॉस्पिटल्स हैं। यहां आकर हम अपनी आत्मा का इलाज करते हैं, हम इस आत्मा का इस शरीर का सदुपयोग करते हैं, जिससे ये आत्मा भगवान की सेवा में वापस जा सके, हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सके। तो इसलिए हम सबका लक्ष्य जीवन में क्या होना चाहिए कि हम अपने जिसके हम पार्ट एंड पार्सल हैं, जहां से हम आए हैं वहां हम वापस लौट सकें, हम भगवान की सेवा में वापस जा सकें। तो आप देखो हमारे प्रश्नों का क्या उत्तर मिल रहा है। सबसे पहले मैंने क्या प्रश्न किए थे कि अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, मुझे कहां जाना है। तो मैं कौन हूं, भगवान इसका उत्तर दे रहे हैं। इसी अध्याय में। दूसरा अध्याय का क्या है, पूरा नाम क्या है, गीता का सार, पूरी समरी है भगवद गीता की। अगर दूसरा अध्याय हम अच्छे से सुने और समझें और इसको अपने जीवन में अप्लाई करें, पूरी भगवद गीता हमें समझ आती है। तो यहां पर भगवान कह रहे हैं, हमारा पहला प्रश्न क्या था, मैं कौन हूं, तो पहला उत्तर है यहां कि हम आत्मा हैं। दूसरा भगवान कहते हैं यहां पे, दूसरा प्रश्न हमारा क्या है, हु एम आई, मैं कहां से आया हूं, और दूसरा उत्तर जो मैंने अभी आपसे बताया कि मैं भगवान का अंश हूं। और हमारा क्या कार्य है, हमें कहां जाना है, वापस भगवान की सेवा में जाना है। तो यही इस दूसरे अध्याय में हम यही पढ़ते चले जाएंगे आगे कि भगवान हमसे क्या शिक्षा दे रहे हैं और क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं। ये ज्ञान क्यों आ रहे हैं, क्योंकि हमें ये पता हो कि क्या इंपॉर्टेंट है और क्या इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, उसका यूज क्या है। शरीर है तो शरीर को पूरी इंपॉर्टेंस नहीं देनी है, उसको वहां तक इंपॉर्टेंस देनी है जहां तक वो हमें भगवान की सेवा में अच्छे से सहयोग दे। इट शुड रिमेन हेल्दी एंड फिट, बट द मेन थिंग अंडर द शरीर के बीच में जो असली चीज है वो क्या है, आत्मा। अभी मैं बोल रही हूं, और जब कभी कोई चला जाता है इस दुनिया से तो हम क्या कहते हैं, मिस्टर सो एंड सो या मिसेस सो एंड सो, शी इज पास्ड अवे। बट व्हाट हैपेंस एग्जैक्टली, He has not passed away, he is still there. शरीर तो वही होता है, फिर भी हम कहते हैं ये व्यक्ति नहीं है। हम लोग, इट्स अ कॉमन फ्रेज कि हम कहीं कोई कुछ चला जाता है तो वहां पर हम क्या कहते हैं, ये व्यक्ति अब नहीं रहा। बट वो तो वही होता है, फिर कौन नहीं रहा, आत्मा नहीं रही। सो हु इज इंपॉर्टेंट, द सोल इज इंपॉर्टेंट। उस सोल के निकलने ही हमने कह दिया वो व्यक्ति नहीं रहा। सो इट इज की सोल इम्पॉर्टेंट है। और जैसे मैंने पहले कहा, हम सोल को उसका भोजन देना भूल जाते हैं। तो सोल इज इम्पॉर्टेंट, तो सोल को ही केयर करना हमारा कर्तव्य है कि सोल इस शरीर में फंसी है, इस शरीर के अंदर वो आई है और इस शरीर का उसको उपयोग करना है। और इस शरीर का सही उपयोग है भगवत प्राप्ति, भगवान के धाम वापिस लौटना। इस शरीर से सहयोग लेना है हमें, इस आत्मा को क्या करना है, इस शरीर से सहयोग लेना है, और इस शरीर के सहयोग से ही वापस जा सकती है। ग्रंथ तो ये भी कहते हैं कि देवता लोग भी इस देह को सिमरते हैं कि कब मनुष्य देह लेंगे और भगवान की भक्ति करेंगे, वापस जाएंगे। इस मनुष्य देह से ही हम भगवान के धाम अपने घर लौट सकते हैं। तो जैसे मैंने कहा कि आज के श्लोक में हमने दो श्लोकों को छुआ है, एक तो 12वां श्लोक है और 13वां श्लोक। तो जो 13वां श्लोक है उसमें क्लियरली बता रहे हैं कि प्रत्येक जीव एक वेष्टी आत्मा है, हर जीव एक आत्मा है, वह प्रत्येक क्षण अपना शरीर बदलता रहता है, कभी बालक के रूप में, कभी वो युवा के रूप में, कभी वृद्ध पुरुष के रूप में। अभी हम अगर मिडिल एज में है तो हमने अपना यूथ खो दिया है, अब हमारा यूथ वापिस नहीं आएगा। जो यूथ में है उन्होंने अपना बचपन खो दिया है, उनके लिए उनका बचपन मर चुका है, किसी का यूथ मर चुका है। तो इसलिए हमारी आत्मा निरंतर परिवर्तनशील, इस शरीर जो है ये परिवर्तनशील है, पर आत्मा परिवर्तनशील नहीं है। आत्मा तो वही है जो बचपन में भी थी, पर शरीर बचपन का नहीं रहा। आत्मा वही है जो जवानी में भी थी, पर शरीर अब जवान नहीं रहा। So, शरीर अब बुढ़ापे में आ गया है और अंत मृत्यु होगा, पर आत्मा नहीं मरेगी, आत्मा उसी समय दूसरा देह ले लेगी। तो जैसे पुराने वस्त्र उतार कर फेंक दिए जाते हैं, वैसे ही आत्मा नया शरीर लेती है। तो इसीलिए भगवान अर्जुन से कह रहे हैं कि तुम मोहित मत हो, तुम्हें शोकग्रस्त होने की कोई आवश्यकता नहीं है। आगे कहते हैं, ये वेष्टि आत्मा मृत्यु होने पर अंतोगत्वा एक शरीर बदलकर दूसरे शरीर में देहांतरण कर जाता है, और चूंकि अगले जन्म में इसका शरीर मिलना अवश्यम भावी है, चाहे वे शरीर अध्यात्मिक हो या भौतिक, अतः अर्जुन के लिए ना तो भीष्म ना ही द्रोण के लिए शोक करने का कोई कारण था, अपितु उसे प्रसन्न होना चाहिए था कि वे अपने पुराने शरीरों को बदलकर नए शरीर ग्रहण करेंगे और इस तरह वे नई शक्ति प्राप्त करेंगे। ऐसे शरीर परिवर्तन से जीवन में किए कर्म के अनुसार नाना प्रकार के सुखों भोग या कष्टों का लेखा हो जाता है। तो आप जानते हैं कि सुख और नाना प्रकार के जो जीवन में किए कर्म के अनुसार नाना प्रकार के सुखों का भोग और कष्ट मिलते हैं। तो जो भी हमें इस समय सुख प्राप्त है, अगर हमारे पास बहुत सुख है और प्रसन्नता है तो पूर्व जन्म के पुण्य किए थे, और अगर दुख है कष्ट है तो पूर्व जन्म के पाप हैं जो हमारे सामने आते हैं। तो इसलिए भगवान इसमें भगवान कहीं भी कोई रोल नहीं प्ले कर रहे हैं। इंडिपेंडेंस है हमारे पास, जो जो हमने किया है उसको हमें भोगना है। हमने पाप किए थे तो दुख भोगेंगे, पुण्य किए थे तो सुख भोगेंगे। और इसमें आगे प्रभुपाद बताते हैं कि ऐसे शरीर परिवर्तन से जीवन में किए कर्म के अनुसार नाना प्रकार के सुखभोग या कष्टों का लेखा हो जाता है। क्योंकि भीष्म व द्रोण साधु पुरुष थे, इसलिए अलग अलग जन्म में उन्हें आध्यात्मिक शरीर प्राप्त होंगे, नहीं तो कम से कम उन्हें स्वर्ग में भोग करने के अनुरूप शरीर तो प्राप्त होंगे ही। अतः दोनों ही दशाओं में शोक का कोई कारण नहीं था। जिस मनुष्य को वेष्टि आत्मा परमात्मा तथा भौतिक और आध्यात्मिक प्रकृति का पूर्ण ज्ञान होता है वह धीर कहलाता है। ऐसा मनुष्य कभी भी शरीर परिवर्तन द्वारा ठगा नहीं जाता। सो जो व्यक्ति ये समझ जाता है कि वो आत्मा है, शरीर नहीं है, और आत्मा के अंत नहीं होता है, आत्मा तो नया शरीर धारण करती है, वो कभी भी ठगा नहीं जाता शरीर परिवर्तन के द्वारा। उसे हमेशा वो धीर कहा गया, उसे पंडित कहा गया, सही महात्मा कहा गया। वो शोकग्रस्त नहीं होता क्योंकि वो जानता है कि ये शरीर तो नाशवान है, शरीर का अंत तो लिखा गया उसी समय जिस समय इसने जन्म लिया। जैसे ही मां के गर्भ में आया इसकी काउंटिंग, रिवर्स काउंटिंग शुरू हो गई। फिर भी हम लोग मूर्ख हैं कि हम लोग बहुत प्रसन्नता से, बहुत खुशी से जन्मदिन मनाते हैं। हमारी आयु घट रही है, हम हर पल हर क्षण खत्म हो रहे हैं, बट इन अ वे इट इज गुड। स्पिरिचुअल लाइफ में बर्थडे मनाना बहुत अच्छा है। अगर हम भगवान की तरफ अग्रसर हो रहे हैं तो ये बहुत अच्छा अवसर होता है भगवान को याद करने का। एनिवर्सरीज, बर्थडेज स्पिरिचुअल लाइफ में जरूर मनाने चाहिए। मटेरियल वर्ल्ड में होटल्स और क्लब्स में जो मनाते हैं वो गलत है। वो हम उसमें वी आर ड्राउनिंग आवरसेल्व्स, इंग्लिश में हम कहते हैं उसमें अपने आपको खो रहे हैं, वो इंद्रिय भोग में खो रहे हैं। पर जब यहां पर हम मनाते हैं सब भक्तों के बीच में तो हम भगवान की तरफ अग्रसर हो रहे हैं, उनकी कृपा प्राप्त कर रहे हैं। यहां पर मनाने से हमें वैष्णवों की कृपा मिलती है, आशीर्वाद मिलता है भगवान का और वैष्णवों का, क्योंकि भक्ति में बिना वैष्णव कृपा के भगवान नहीं मिलते हैं। भक्ति शुरू ही वैष्णव कृपा से होती है। भक्ति कभी भी हमारे अपने इंडिविजुअल से नहीं होती है कि मैंने प्रयास किया और मैं बहुत अच्छा भक्त बन गया, नहीं। भक्ति हमेशा वैष्णव कृपा से मिलती है, गुरु के आशीर्वाद से मिलती है। भक्ति कभी भी अपने इंडिविजुअल से, अपने एफर्ट से नहीं है। ये जरूर प्रैक्टिकल है, ये है, करनी हमें ही है, पर कृपा गुरु की होती है, आशीर्वाद जो है वो गुरु का होता है। तो इसलिए भक्तों के संग में ये मनाना बहुत अच्छा है। जब हम भक्तों के संग में मनाते हैं तो हमें भक्तों की वेल विशेस मिलती है, भक्तों की गुड विशेस सारी मिलती है, प्लस भक्तों का आशीर्वाद मिलता है, और उसके द्वारा हम अपनी प्रोग्रेस कर सकते हैं, भक्ति में एडवांसमेंट कर सकते हैं। सो इट्स वेरी गुड कि हमें ये जो उत्सव है, जो जन्मदिन जैसे ये छोटे, ये बहाने कहे जाते हैं, इन्हें हम यहाँ पर भगवत कृपा प्राप्त करने के लिए मनाते हैं। ये बहाना, इट्स एन एक्सक्यूज टू गेट द ब्लेसिंग्स ऑफ द लॉर्ड, भगवान की ब्लेसिंग्स लेने का एक बहाना है। तो इसलिए हमें ऐसे उत्सव ज्यादा से ज्यादा भक्तों के बीच में मनाने चाहिए भगवान की कृपा प्राप्त करने के लिए। कोई भी छोटा मोटा फेस्टिवल ओकेजन हमारे घर में, कोई खुशी का मौका हो, वो भक्तों के संग में मनाना चाहिए कि हमें कृपा मिले और हम भी भक्ति में आगे बढ़े, भगवान की कृपा हो, भगवान का प्रेम प्राप्त हो हमें। तो इसलिए हमें ये सब जो ओकेजन है इन पर जरूर एक रखना चाहिए कि हम भक्तों के बीच में हों, चाहे नया साल शुरू हो, चाहे कोई भी ओकेजन हो, फेस्टिवल हो, इट शुड बी अमंग द डिवोटीज, वी शुड बी प्रेजेंट देयर अमंग द डिवोटीज, बिकॉज भक्तों की कृपा से ही, वैष्णव कृपा से ही हमें भगवान की कृपा प्राप्त होगी। भगवान की कृपा हमने डायरेक्ट नहीं मिल सकती है, भगवान की कृपा केवल मिलेगी भगवान के भक्तों की सेवा के बाद, डायरेक्ट नहीं मिल सकती। तो इसलिए हमें ये जो छोटे मोटे जो बहाने हैं इन्हें सब भगवान की सेवा में लगाने चाहिए। किसी भी बहाने से हमें भगवान की सेवा करने का मौका मिलना चाहिए, अवसर मिलना चाहिए, भगवान की सेवा, भगवान के भक्तों की सेवा, जिससे हमें कृपा प्राप्त हो और हम भगवत धाम लौट सके। भगवान गीता में कहते हैं ये यथा माम प्रपद्यन्ते तास्तेमं भजामि अहम्। भगवान कहते हैं जो मेरे पास जितनी शरणागति में, जितनी भी मात्रा में शरणागति देता है, मैं उसकी ओर उतना ही आता हूं। तो कहने के लिए तो बहुत कुछ है पर समय इजाजत नहीं दे रहा है, इट्स नॉट परमिटिंग। मुझे कहा गया है कि 8:30-8:35 तक लेक्चर खत्म कर दिया जाता है और फिर 10 मिनट तक क्वेश्चन आंसर्स चलते हैं। तो आप में से कोई क्वेश्चन पूछ सकते हैं, उसके बाद एक माला का जाप होगा। तो वी हैव 5 मिनट्स, किसी को कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। एनी क्वेश्चन? अगर प्रश्न नहीं पूछा जाते तो फिर लगता है कि किसी ने कुछ सुना ही नहीं है। हाँ जी,
अर्जुन जो था इतना निर्मल मन का था, निर्मल के सब कुछ होते हुए, अत्याचार होते हुए वो सारा कुछ हुआ, द्रौपदी वस्त्रहरण हुआ, लाक्षाग्रह हुआ,
प्रश्न पूछे,
फिर भी वो कहते हैं कि मैं युद्ध नहीं करना चाहता, मतलब थोड़ा
कंपैशनेट,
उसको विराट रूप दिखाया कि ये तो सब
आप बहुत आगे चले गए, अभी तो हम शुरू में है। युद्ध नहीं करूंगा,
लेकिन जब विराट रूप दिखाया तब वो उनको देखा के तब आया।
आपका प्रश्न क्या है? बन सकते हैं, तभी तो गीता पढ़ेंगे, भगवान के बारे में सुनेंगे तो निर्मलता आएगी। अर्जुन के बारे में सुना है, पढ़ा है, तभी निर्मल बन रहे, बनने का प्रयास करेंगे। That's it. Any other question? किसी एक मन में कोई संशय है, छोटा मोटा कोई? Yes, I can see your hand. Just a minute, she's got up. Just a minute, yeah. Yes. ये याद रखने के लिए अभी हम 10 मिनट जपा करेंगे, तो वो जो जप हम अपने जीवन में रोज करेंगे तो भगवान हमें रोज हर समय याद रहेंगे, फिर हमें जो परिवार का मोह है वो नहीं खींच सकेगा। भगवान कहते हैं कि जो मम माया दुरुत्य, ये मेरी माया है, माया भी मेरी है, तो मोह और माया ये भी भगवान की दासी है। तो भगवान कहते हैं मम माया दुरुत्य, जब मैं माया को बोलूंगा इस माया से तुम पार नहीं हो सकते, जब मैं बोलूंगा इस माया को तुम्हें छोड़ दे तब ये तुम्हें छोड़ेगी। तो इसीलिए हम भगवान को भूल जाते हैं, क्योंकि हम भगवान को याद नहीं कर रहे। तो जितना हम याद करेंगे उतना भगवान हम पे कृपा करेंगे कि हम उन्हें याद रख सकें। सो दैट इज रेसिप्रोकल, भगवान कहते हैं तुम मुझे याद रखो करो और फिर मैं तुम्हारी याद में रहूंगा। So that is there. So start chanting. Do you chant any rounds? आप जप करते हो? I'm asking you. Very good. So उनको और अच्छे से करो। हाँ जी प्रभु जी, पहले कोई पूछ रहा था उस समय, भगवान का भोग भक्ति, भगवान का भक्ति मन या बुद्धि से? That's a good question. पर पहले बुद्धि का उपयोग करना पड़ेगा और मन को तो काबू करना बहुत ही कठिन है। अर्जुन का मन चंचल है, अर्जुन भगवान से पूछते हैं कृष्णा मना है चंचला। सो अर्जुन को भी क्या शिक्षा दी भगवान ने, तो मन जो है उसको वश में करना बहुत मुश्किल है। सो मन के ऊपर है बुद्धि, बुद्धि के ऊपर है आत्मा। सो आत्मा के लेवल के ऊपर भगवान कहते हैं जब हम सोचेंगे तो हम भगवान के निकट आ जाएंगे, तो इसलिए आत्मा का ज्ञान दिया जा रहा है। तो भक्ति जो है वो पहले तो हमें फिजिकली करनी पड़ेगी, वैदिक भक्ति नियम के अनुसार, क्योंकि मन हमारा बहुत चंचल है। सो मन को वश में करना है तो पहले वैदिक नियम से शिष्य बनना है, तभी अर्जुन शिष्य बन रहा है, शिष्टाचार सीख रहा है, डिसिप्लिन, कि विदाउट डिसिप्लिन भक्ति नहीं हो सकती है। कोई कहे वो मेरे को तो ये बहुत बर्डन लगता है, ऐसे नहीं कर सकता मैं तो अपनी मर्जी से करूंगा, फिर बहुत कठिन है उसके लिए भक्ति करना, क्योंकि नियम चाहिए, नियम में बंधना थोड़ा मुश्किल लगता है। अगर आप सड़क पे चले जाइए, नियम नहीं होगा तो अभी ट्रैफिक जैम रहेगा। कभी तो हम कोसते हैं कि बड़ी रेड लाइट्स है सड़क पे, और आप एक मिनट सोचिए रेड लाइट बंद हो जाए तो ट्रैफिक ऐसे फंस जाता है कि आप वहां पर घंटों फंसे रहते हैं फिर। तो इसलिए नियम बहुत जरूरी है, जो गवर्नमेंट ने रूल बनाया, चाहे रेड लाइट 2 मिनट की हो चाहे 1 मिनट की हो, वो बहुत एसेंशियल है उसका होना, कि सब अपने अपनी लेन में खड़े रहते हैं। पर जैसे ही वो रेड लाइट खराब हुई, लाइट चली गई, सब इधर से उधर से आए और ट्रैफिक जाम हो गया। सो इट इज लाइक दैट। सो मन से भक्ति करेंगे तो कभी पार नहीं हो पाएंगे। भक्ति नियम से होगी, नियम अनुसार होगी तो हम सक्सेसफुल हो जाएंगे भक्ति करने में। इसीलिए कहा गया है कि नियम होना चाहिए कि मैंने ये करना है, वो नियम से चलना है। भक्ति नियम से होगी, साधना जो है वो शिष्टाचार से होगी, बुद्धि से। यस, देयर वाज अनदर क्वेश्चन।
घर में रहते हुए ऐसा एटमॉस्फेयर नहीं होता जिससे आदमी परमात्मा की भक्ति कर सके, पर हर घर का मेंबर जो है ना वो अपनी अपनी करना चाहता है।
दैट्स राइट, आपका बहुत बहुत प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, इट्स वेरी प्रैक्टिकल, क्योंकि हम सब नेचुरली इंद्रियों के वश में हैं। हर जीव, जैसे यहां पर भी क्या, अपने कर्मा अनुसार अपनी परिस्थिति में है वो। पर इसमें हम अपने घर के एटमोस्फेयर को कैसे बदल सकते हैं? भगवान ने भगवद गीता में, जैसे मैंने कहा, हर प्रश्न का उत्तर दिया है। सो भगवान कहते हैं कि आप सबसे पहले सबकी चिंता छोड़ दो, सबसे पहले अपनी चिंता करो। किसी की आसपास वाले की चिंता नहीं करनी है, अपने बच्चों की भी चिंता नहीं करनी कि मैं इसको कैसे भक्त बनाऊं, मैं इसका कैसे करूं, वो करूं। सबसे पहले ना पत्नी की ना बच्चों की, सबसे पहले अपनी चिंता कि मैं कैसे डिवोटी बनूं, मैं कैसे भक्त बनूं। आप अगर प्लेन में सफर करेंगे तो आप, मुझे रिसेंटली व्हेन आई वाज इन द प्लेन, बहुत चीजें देखने को, सीखने को मिलती है। हर चीज से हम कुछ सीखते हैं। आप जब प्लेन में बैठेंगे तो जब एयर होस्टेस सब बताते हैं सेफ्टी मेजर्स, तो वो कहते हैं कि जब ऑक्सीजन का प्रेशर कम होगा तो मास्क अपने आप गिरेंगे ऊपर से, और आप सबको मास्क लगाना है। तो आप कभी ध्यान देंगे तो वो कहते हैं सबसे पहले अपना मास्क लगाना है, दूसरों की मदद करने से पहले, और अपने बच्चे का भी मास्क बाद में लगाना है, पहले अपना मास्क लगाना है। तो आप कहेंगे कितने निर्दयी है, मैं मेरा बच्चे का सांस बंद हो रहा हूं, पहले मैं अपना सांस ठीक कर लू फिर उसको मैं मास्क लगाऊं। पर दिस इज अ रूल। आप दूसरे की मदद तभी कर सकते हैं कि पहले आप पहले अपने आप को पूरा परफेक्ट कर लेंगे, ना भी परफेक्ट कर सके एटलीस्ट अपने आप को सिक्योर कर लेंगे। सो अगर जब हम भक्ति के मार्ग पे खुद पक्के हो जाएंगे, दृढ़ता से चलेंगे, तो आसपास वाले स्वयं बदल जाएंगे। आपको पता भी नहीं चलेगा कब वो आपसे इन्फ्लुएंस हो गए और बदल गए। तो आपका घर ही वृंदावन बन जाएगा, आपका घर ही धाम हो जाएगा। दैट्स इट। हरे कृष्ण। आई थिंक सो लास्ट क्वेश्चन अब। यस, मन तो अंतःकरण है। मन बुद्धि, ये मन जो है, दिस इज द अंतःकरण, इट्स द माइंड, इट्स एन एब्स्ट्रैक्ट। सो हमारा सूक्ष्म शरीर किससे बना है? मन बुद्धि अहंकार से। सो ये तीनों स्थूल और सूक्ष्म, आगे भगवान इसका भी ज्ञान देंगे। सो मन जो है अंतःकरण है, और कॉन्शियसनेस जो है इसी को बदलना है। कृष्ण भावना भावित होना, भक्ति करना और कुछ भी नहीं है। भक्ति करना अपनी चेतना को बदलना है, अपनी कॉन्शियसनेस को बदलना है। सो माइंड इतना पोल्यूटेड है, उसको बस शुद्धिकरण करना है, उसका प्योरिफिकेशन, और भगवान का नाम लेने से ही ये प्योरिफिकेशन हो जाएगा। दैट्स इट। दैट्स माइंड, माइंड, मन इज माइंड, नहीं इंटेलिजेंस। बुद्धि इज इंटेलिजेंस, मन इज माइंड। सो हम यही समाप्त करते हैं। अब आप मेरे साथ एक माला का हम जप करेंगे, और उसके बाद प्रसादम की व्यवस्था है, कुछ अनाउंसमेंट्स और फिर प्रसादम।